ओम शांति। आप सबको संकल्प चला होगा कि दादी नहीं आई। दादी की तबीयत ठीक है, परंतु आज थोड़ी थकान है और कल सवेरे दादी को ट्रैवलिंग करनी है, दिल्ली जाना है। तो दादी ने फिर कहा कि दादी अभी थोड़ा रेस्ट करेंगी। ऊपर का समाचार सुनाने के लिए दादी ने कहा, तो आज की बात मैं बताती हूँ। आज एक युगल आए हैं, आज रात्रि को चले गए वो वापस दिल्ली, परंतु एक युगल आए थे और वो है रशिया में, मॉस्को में एम्बेसडर बांग्लादेश का और उसकी वाइफ, उसकी युगल। तो दो तीन दिन से शायद वो कोर्स भी कर रहे हैं और सबसे मिल भी रहे हैं। और आज फिर जब हमारे से मुलाकात हुई तो माता ने एक प्रश्न पूछा, कहा कि यहाँ हम होते हैं तो ये वातावरण बड़ा अच्छा लगता, बहुत प्राप्ति होती है, परंतु मुझे मालूम है कि जब हम वापस अपने स्थान पर पहुंचेंगे फिर वहां की बातें हमको ऐसे अपनी तरफ खींच लेंगी जो हम ये बातें फिर भूल जाएंगे। तो आप हमें कुछ ऐसी बात सुनाओ जिससे हम ये बातें वहां पर याद भी रख सकें। तो मैंने दो बातें सुनाई, एक तो आध्यात्मिक रीति से मैंने उनको बताया कि जब मैंने बहुत समय पहले अव्यक्त बाप दादा मुझे वापस विदेश भेज रहे थे, लंदन जाने के लिए कह रहे थे, तो मैंने बाबा को यही कहा कि उन दिनों में अव्यक्त बाबा के साथ बहुत सहज मुलाकात नजदीकी होती थी। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा वहां पर जाकर के और बातों का असर न हो उसके लिए क्या साधन है, क्योंकि सेंटर विदेश में कहां पर भी नहीं था। मैं अपने लौकिक माँ बाप के घर पे ही जा रही थी। यहाँ समर्पण होने के बाद बाबा ने कहा कि सेवा के लिए जाओ। तो बाबा ने कहा कि तुम सदा यही सोचना कि मधुबन की छत्र छाया और बाबा की छत्र छाया तुम्हारे सिर के ऊपर है, और साथ साथ जो मधुबन का टाइम टेबल है वो तुम याद रखना। तो मैंने उनको बताया कि आप कहां पर भी जाएंगे, परंतु यदि सवेरे के समय बाबा को याद करेंगे और साथ साथ बुद्धि को आध्यात्मिकता का अच्छा भोजन देंगे, और फिर साथ साथ आप दिन भर वो छत्र छाया याद रखेंगे कि बाबा की छत्र छाया आपके ऊपर है, तो वो आपको सेफ रखेंगी और बाहर की बातों का असर नहीं होगा। परंतु साथ ही साथ आप जबकि संसार की हालतें अभी देख रहे हो, तो संसार की हालतें देख करके ही जैसे कि घंटी बज रही है, सबको एक बहुत जबरदस्त इशारा मिल रहा है समय की पुकार क्या है। तो 2009 से हम लोग ब्रह्मा कुमारीज के तरफ से करीब कभी 15 को छुट्टी होती, यूएन के तरफ से कभी 10 को, अभी इस बारी पेरिस में सिर्फ 4 को। तो समय समय अनुसार वो भिन्न भिन्न हमको नंबर्स देते हैं। तो उन कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करते, हर कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है। पिछले साल दादी की तबीयत बहुत नाजुक थी तो मैं नहीं गई, तो डेलीगेशन तो गया था, परंतु उसमें एक बात तो एक तरफ साइंटिस्ट्स बता रहे हैं, परंतु दूसरी तरफ संसार की हालतें प्रैक्टिकल भी देख रही हैं। और बाबा ने तो कब से पहले से ही कह दिया था कि प्रकृति पर इतना पाप हो चुका है इस धरती पर, जो अभी प्रकृति बहुत नाराज है। और न सिर्फ, मुझे याद है कि एक बारी जब कहां पर बाढ़ आई थी तो अव्यक्त बाप दादा को वो समाचार सुना रहे थे, ये था वहां पर ओम शांति भवन के दिनों में, तो स्टेज पर जो बाबा के सामने बैठे थे बाबा को ये समाचार सुना रहे थे, कि बाढ़ बहुत जबरदस्त आई है, तो बाबा ने शांति से जैसे कि उन आत्माओं को योगदान भी दिया, परंतु साथ साथ बाबा ने कहा अभी तो एक तत्व का खेल देखा, वो समय आएगा जबकि सब तत्वों का इकट्ठा खेल देखेंगे, तो उस समय आपकी स्थिति क्या हो, आपकी स्थिति ऐसे हो जो बाबा का संदेश देने अर्थ अथवा सकाश देने अर्थ आप अपना फरिश्ता रूप धारण करके आप सबको वो सकाश दे सके, उनको परमात्मा की याद दिला सके, बाप के नजदीक उन आत्माओं को ला सके। तो अब साकार मुरलियों में भी ये अव्यक्त बाबा का कहना, परंतु साकार मुरलियों में 60s की बात है, अब जो आज हम पढ़ रहे हैं कितनी मुरलियों में बाबा ने तत्वों की किस तरह से हलचल होंगी अनेक बातें बाबा ने सुनाई है और प्रैक्टिकल वो भी देख रहे हैं। और माउंट आबू से नीचे आते हैं तो आज तक भी रोड कहाँ कहाँ टूटा हुआ है, परंतु रोड तो फिर भी ठीक कर ही लेंगे, परंतु जो वृक्ष है गिनती से बाहर है, आप ऊपर से नीचे तक गिनती करो, मैं समझती गिनती से बाहर ही होंगे, कितने वृक्ष बिल्कुल अपनी जड़ों से निकल कर गिरे हुए हैं, तो आप सोचो कि कितना उस समय बाढ़ आया यहाँ ही आपके बिल्कुल दर पर, जो कुछ दिनों तक बिजली कईयों को नहीं मिली, पानी नहीं मिला है, बाबा के घर में तो सब कुछ था परंतु बाहर के जो शहर वाले थे गांव वाले थे उनको तो कुछ नहीं था। तो छोटी सी वो रिहर्सल देखी, तो एक तरफ साइंटिस्ट 2009 में भी यही बात कहते थे कि जो दूषित हवा निकलती जा रही है, और उस समय कई चैलेंज करते थे, कई लोग कहते थे कि ये तो प्रकृति का खेल चलता है, कभी अच्छा होता कभी ठीक नहीं होता, प्रकृति नीचे ऊपर खेल करती ही रहती है। परंतु उसके बाद जो भी सारा इन्फॉर्मेशन मिलता गया है और प्रकृति की बातें देखते गए हैं लोग, अभी तो साइंटिस्ट कहते हैं इसमें कोई शक ही नहीं है, कुछ वर्षों से कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है, मानव ने जो अपना इतना मटेरियलिज्म के हिसाब से जीवन बना के रखा है, इतना सब कुछ जो हर बात में टू मच हो गया है, इस कारण से ही जो ये कार्बन इमिशंस निकल रहे हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट की बात आती है, गाड़ियों की बात आती है, उसमें भोजन की बात आती है, बाबा ने हम सबको तो वैष्णव बना के रखा है परंतु बाहर वालों का तो कुछ और ही हिसाब है। तो जो कुछ भी कोयला जलता है, लकड़ियां जलती है, ये सब बातों का जो गर्माइश निकल रही है, दूषित हवाएं निकल रही है, वो ऊपर तक पहुंच करके ऐसे उन्होंने छाया बना के रखी है जो सूर्य की किरणें भी हम लोगों के पास ठीक तरह से नहीं पहुंचती, वो भी दूषित हो गई है। परंतु साथ ही साथ जो गर्माइश आ गई है संसार में, उस समय वो कहते थे 2009 में कि वो जो गर्माइश अभी सागर के अंदर चली गई है, हम लोग उसका अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि जब वो सागर के तले पर पहुंचेंगी इसका क्या रिजल्ट होगा। आज तक हमारे सामने वो कोई एग्जाम्पल नहीं है जो हम प्रिडिक्ट कर सके कि उसका नतीजा क्या है। कुछ हद तक गर्माइश अंदर गई है और उसका रिजल्ट तो देख रहे हैं, इतनी जबरदस्त सुनामी, तूफान, फिलीपींस में फिर अभी तूफान आया है, तो ये सब बातें तो देख ही रही हैं, परंतु बिल्कुल तले तक चले जाएंगे फिर उसका नतीजा क्या होगा हम कह नहीं सकते। तो क्लाइमेट चेंज ऐसे घंटे सबको बजा रहा है जिससे कईयों का जैसे कि दिमाग चल रहा है कि अभी ये सब कुछ क्या हो रहा और हमें क्या तैयारी करनी है। तो माता को तो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताया, थोड़े में ही बताया, परंतु उसमें खास बाबा ने जो हमें शुरू से लेकर बातें बताई है और सिखाई है, उसमें खास जब बाबा कहते हैं कि अंत समय बस एक की याद हो, एक की याद के सिवाय यदि और कहीं भी बुद्धि योग गया तो उस घड़ी बाबा की मदद आपको नहीं पहुंच पाएंगी। तो प्रैक्टिकल अभी हम देख रहे हैं कि कोई भी कलामिटी आती है, चाहे वो टेररिज्म की कलामिटी हो, चाहे वो नेचुरल कलामिटी हो, परंतु जो लोगों को आजकल आदत पड़ गई है, कोई भी बात होती है तुरंत फोन करेंगे अपने मित्रों को, फोन करेंगे अपनी संबंधियों को, ये या कुछ ना भी हो रहा है तो भी व्हाट्सएप में मैसेज भेजते रहेंगे, कुछ न कुछ, अभी हम यहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, अभी कोई जरूरत नहीं है ये सब बातें बताने की, परंतु एक ही आदत पड़ गई है, बस कुछ न कुछ कम्युनिकेशन चलता रहे। और यदि उस घड़ी कुछ ऐसे बात हो रही है तो उस घड़ी सबसे फर्स्ट बात जो कट ऑफ होता, यदि कोई टेररिस्ट की बात होती है तो गवर्नमेंट तो फर्स्ट कट ऑफ करती है मोबाइल फोन्स के टावर्स को, और यदि कुछ नेचुरल डिजास्टर आ जाता है उसमें भी पहले तो फोन्स कट हो जाते हैं, फोन्स चालू नहीं होते हैं। तो उस घड़ी ना आप किसी को समाचार दे सकेंगे, ना किसी से उस घड़ी राय सलाह ले सकेंगे, उस घड़ी जो अपनी वायरलेस कनेक्शन है बाबा के साथ, उसमें बुद्धि की लाइन हमारी क्लियर हो, मन हमारा साफ हो, तो जब इस तरह से अभी से ही वो अभ्यास हमारा चालू होगा तो फिर जो बाबा हमें इशारा देने चाहते हैं हम वो इशारा पकड़ सकेंगे, और फिर उस अनुसार जो हमें करना होगा, चाहे अपने लिए चाहे अन्य आत्माओं के लिए, ऐसे ही हम कोई शरीर को बचाने के लिए यहाँ से वहां भागेंगे, परंतु जो भी बाबा को करना है कराना है, लाइन तो बाबा के साथ कनेक्शन चाहिए ताकि बाबा का इशारा हम पकड़ सके। और फिर साथ साथ मानो कि आज कोई बात आती है वो बात फिनिश भी हो जाती, कितना समय लगता है घर जाने में, बाबा ने कहा है डेट कॉन्शियस नहीं बनना है, सोल कॉन्शियस बनना है, परंतु अभी जो कई बातें होती ही रहती है उसमें एक ऐसी शक्ति का आजकल संसार में वर्णन कर रही हैं, जो वो उसका वर्णन कर रही हैं, परंतु वो कैसे अंदर में डेवलप हो उनको ये नहीं मालूम। उसका हिंदी में मुझे पूरा शब्द नहीं आता, परंतु अंग्रेज में उसको कहती है रिजिलियंस। रिजिलियंस का भाव ये है कि आपके पास इलास्टिक बैंड हो, रबर बैंड, और आप उसको टोली के बॉक्स में लगाने चाहते हो, रबर बैंड तो इतनी होती, परंतु उसको खींच करके आप इतनी टोली के बॉक्स में तो लगा सकते, परंतु फिर उसको बॉक्स से उतारो तो फिर इतनी साइज की नहीं बन के रहेंगी, वापस अपनी छोटी साइज को पकड़ लेंगी, और यदि आपने उसको अधिक स्ट्रेच किया तो फिर वो टूट जाएंगी। तो रिजिलियंस का भाव ये है कि आपकी जो स्थिति है उस स्थिति में परिस्थिति जो आती है आप उसमें इतनी अपने में शक्ति हो जो आप उसको समा सके, उस बात को सामना कर सके, वो बात फिनिश हो जाए और आपकी स्थिति में कुछ फर्क न पड़ा हो। सेम जो आपकी पहले शांत में सुखमय स्थिति थी, समस्या फिनिश और आपकी वही की वही स्थिति, ऐसे नहीं कि आपको इतना गहरा दुख अंदर चला गया हो जो आप फिर औरों को संभाल न सके या खुद को संभाल न सके, क्योंकि ये देखा गया है कि जब कोई बात के कारण भी मन के अंदर दुख की लहर आती, चाहे बड़ी बात हो चाहे छोटी बात हो, परंतु जो दुख होता है अंदर, उस दुख की स्थिति में कोई भी किसी की सेवा नहीं कर पाता, राइट? अंदर अपना दुख हम संभाल रहे हैं तो हम औरों की क्या सेवा कर सकेंगे। तो बाबा ने तो ये कह दिया है कि बाबा दुख हरता मिला सुख करता मिला, और बाबा से जो प्यार की शक्ति पवित्रता की शक्ति अभी हम ले रहे हैं, उससे अपने को इतना हम साफ कर लेवे जो कोई दुख की लहस न रहे, परंतु साथ ही साथ इतनी शक्ति हो जो कोई भी बात सामने आए हम उसको फेस करके और आगे अन्य आत्माओं को भी मदद कर सके और हमारी स्थिति में रिजिलियंस, कोई फर्क न पड़े, हम उसमें शक्तिहीन न हो जाए, ना उम्मीद न हो जाए, कोई प्रकार का भी उसमें कुछ असर न हो। अभी अभी शक्तियों की पूजन के दिन चल रहे थे, कल विजयदशमी था, तो आज विजय की बातें हम कर रहे हैं कि इस स्थिति अपनी हम ऐसे बना करके रखें जो विजय अभी से ही नजर आती रहे अपनी स्थिति के द्वारा। तो ये जो क्लाइमेट चेंज की बात है, मुझे लगता है कि कई विदेश में तो मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि न सिर्फ समस्या आने पर उनका संकल्प चलता कि ये क्या हो रहा है और अब हमें उसका क्या इलाज है, परंतु जो देखने वाले लोग हैं वो भी समझ रहे हैं कि ये जो इतनी बातें मानव ने इतनी हिंसा की है प्रकृति के ऊपर, जो प्रकृति की ये हालत हो रही है, ह्यूमन इंटरवेंशन, वो हिंसा शब्द कभी कभी कहते हैं कभी कभी नहीं भी कहते हैं, पर द ह्यूमन इंटरवेंशन ये तो जरूर कहते ही हैं कि मानव के कारण ही ये हालत अभी हुई है, ये कोई नेचुरल बात नहीं है, मानव ने ये सब कुछ इस तरह से किया है। परंतु उसमें बाबा हमेशा कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति भी ऐसे मिल जाता जिस व्यक्ति के द्वारा बाबा उसको टचिंग देकर के अनेक प्रकार की सेवाएं कराता, तो प्रैक्टिकल हम लोगों ने ये देखा कि जो कुछ वर्षों से मुख्य माता रही है वहां की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, तो हर कॉन्फ्रेंस की तैयारियां वो करती है, जो ऑफिस उनों की बनी हुई है जर्मनी में बॉन, वहां पर वो ऑफिस सारा कारोबार चलाती है, संभालती है, तो वो हम लोगों से हर साल मिलती रही। फिर करीब 3 साल से उसने पर्सनल मुलाकात का टाइम दिया। उस पर्सनल मुलाकात में उसको बहुत ही एक विशेष अनुभव रहा। क्या था कि उसका, हम लोग खास जो खास एनवायरमेंट की बहन है सोनिया, वो डेनमार्क से आकर के जर्मनी पहुंची, मैं लंदन से गई और हम लोग उसके ऑफिस में आकर के मिले। तो राउंड टेबल पर उसने हम लोगों को भी बिठाया और अपने ऑफिस का चीफ ऑफ स्टाफ और एक और भाई को भी बिठाया। 10 मिनट के बाद उसके पास एक नोट कोई लेके आया, तो जो बात चल रही थी वो समाप्त हुई और उसने कहा कि मुझे माफ करना, आप लोग बहुत दूर से आए हो मिलने के लिए, परंतु ये एक मेरी ऑफिस की कॉलीग है जो जिसका अभी हॉस्पिटल में बहुत गहराई से तबीयत का चल रहा था, परंतु अभी समाचार मिला उसकी अंतिम घड़ियां है, तो मुझे जरूर उसके पास जाना है, परंतु आप लोग इनों के साथ अपनी बातें करना। तो सोनिया ने कहा कि ऐसे करते हैं कि हम 3 मिनट के लिए योग करते हैं और बहन कमेंट्री करेंगी और आप हमारी वो गुड विशेस परमात्मा की याद की उस बहन के पास लेके जाना। तो 3 मिनट का 5 मिनट भी शायद हो सकता, परंतु उस घड़ी बाबा की याद में कमेंट्री करते गए और वो सभी बहुत ही शांति से, वो जैसे कि बाबा हाजिर हो जाते, बाबा को प्यार से याद करो तो बाबा हाजिर हो जाते, प्रैक्टिकल अनुभव है, तो बाबा जैसे कि उस घड़ी भी हाजिर हो गए थे। तो वो बहन बहुत नम्र भाव से, बहुत दिल भरी हुई थी तब तक उसकी, तो फिर वो हमसे छुट्टी लेकर के गई। फिर कारोबार की बातें, आप लोग क्या करते कैसे करते, इंटरफेथ का क्या होता, धर्म का क्या असर होता, ये सब वो बातें सुनते रहे और नोट्स लेते रहे कि हम उस बहन को बताएंगे। उसी रात्रि को मेरे पास उस माता का ईमेल आया है कि मैं पहुंची, आप लोगों के परमात्मा की याद की बातें मैंने उसको सुनाई और बहन बहुत तकलीफ में थी, परंतु परमात्मा की याद की बातें सुन करके उसने मुस्कराया और फिर कुछ मिनटों के बाद ही उसने शरीर छोड़ा। तो मैं आपको दिल से थैंक्स देती हूँ कि आप लोगों ने उस आत्मा को, जैसे कि उसकी यात्रा को सफल किया। तो तब से फिर जब जब कॉन्फ्रेंस होता, अभी 10,000 का कॉन्फ्रेंस है, 15,000 का कॉन्फ्रेंस है, परंतु ये माता हम लोगों के साथ एक घंटा जरूर बैठती, योग भी करती, फिर कुछ ज्ञान की बातें भी सुनती, फिर जो उनका चल रहा है उसका कुछ पूछती कि अभी मैं इस सिचुएशन में क्या करूं। तो कोर्स देना तो अलग बात रही, परंतु इस तरह से उसका नजदीक का संबंध हो गया। पिछले साल फिर से उनके पास कॉन्फ्रेंस थी जर्मनी में ही, और वहां पर गवर्नमेंट्स का कारोबार चलता है, यूएन मींस गवर्नमेंट्स, दोनों का चल रहा था, और अपने पास जो एनजीओस है उनके पास तो कभी 25 साथी है, कभी 30 साथी हैं, 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होते हैं यूजली, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स चालू होते हैं। तो ये माता ने हम लोगों से पूछा कि आपका कल क्या प्रोग्राम है, तो उसको बताया। तो माता ने गवर्नमेंट के प्रोग्राम में न जा करके वो हमारे छोटे से प्रोग्राम में आकर पहुंची, उसमें करीब 25 लोग थे। तो माता आते ही फिर मालूम था कि उसको है ही कम समय, तो थोड़ा उसको सार में बताया कि क्या बातें चल रही है, फिर उसको माइक दिया। तो माता क्या कहती कि वहां पर जो बातें चल रही है वो सब है हेड की बातें, और यहाँ जो आपके पास बातें चलती है वो है हार्ट की बातें। और मैंने देखा है कि हेड की बातों से कोई अग्रीमेंट नहीं हो रही है, इतने वर्षों से हम कोशिश कर रहे हैं, कोई अग्रीमेंट कर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। मुझे अभी लगता है कि हार्ट की बातों पर ज्यादा ध्यान हम देंगे तो शायद आगे चल करके कुछ इसका सफल कार्य हो सकता। तभी मैं आपके हार्ट की बातों को सपोर्ट देने के लिए खास में आई हूँ। फिर कुछ मास के बाद ही उसने इंटरफेथ प्रोग्राम रखा वहां पर न्यूयॉर्क में, जब पिछले साल सितंबर मास में समिट रहा, तो उसमें भी जो खास इंटरफेथ का प्रोग्राम था उसमें खास ब्रह्मा कुमारी को बुलाया, तो उसमें सब धर्म वाले मुख्य मुख्य लोग थे, और जो मेरा सेशन था उसमें स्वीडन का बिशप था और एक अफ्रीका का भी कोई मुख्य था। तो एक एक ने अपने देश में हम लोग क्या कर रहे हैं वो बताया। तो मैंने तो जो हम स्पिरिचुअल बातें बताते हैं, पहले तो मुख्य तो अपनी स्पिरिचुअल बातें हैं कि मानसिक स्थिति से, संकल्प से, कॉन्शियसनेस से कैसे ये असर हुआ है, और अभी अपनी कॉन्शियसनेस को ऊंचा करने से, संकल्प को ऊंचा करने से कैसे उसका अच्छा असर हो सकता है, ये बातें सुनाई। परंतु साथ साथ मैंने जो अपना इंडिया वन प्रोजेक्ट का है वो भी सुनाया। तो जो लोग वैसे ब्रह्मा कुमारी को ज्यादा वजन नहीं देते, आप समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े चर्चेस है, धार्मिक संस्थाएं हैं, उनको तो हजारे वर्ष हो गई है, ब्रह्मा कुमारी को तो सिर्फ 80 वर्ष हुए हैं, तो उनके तो बहुत बड़ा ढांचा बना हुआ है। परंतु वो लोग खास आकर के पूछते थे, बाद में बातचीत करने लगे, क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल एक तरफ, परंतु साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल भी बाबा का कार्य हो रहा है उसका भी बहुत विश्व में उसका इम्पैक्ट हो रहा। तो मैं देखती हूँ कि जो जो बाबा कार्य कराते हैं उसमें खास जो बाबा आजकल यूएन में पीस के लिए, चाहे क्लाइमेट चेंज के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बाबा करा रहे हैं, बाबा ने एक बार कहा था जरूर बाबा का झंडा वहां भी लहराएंगा, तो वो समय कोई दूर नहीं है। तो आज का जो सवेरे की बातचीत चली उससे फिर आज ये समाचार आपको सुना रहे हैं। बाकी तो कल से लेकर अपने पास पीस ऑफ माइंड के गेस्ट्स आने लगे हैं, और ये 19th पीस ऑफ माइंड का प्रोग्राम चलने वाला है। तो हर साल वो चलता ही रहा है, चलता ही रहा है, और बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं सारे विश्व भर के, ये तो आप जानते हैं। परंतु अभी नेक्स्ट वो कार्य ज्ञान स्वरूप में आरंभ होगा कल से। बाकी तो दादी ने खास आप लोगों के लिए एक विशेष टोली भी भेजी है, तो मीरा बहन जी और हम यहाँ आगे बैठेंगे और वो आपको टोली मिलेंगे। आप देखेंगे कि वो बड़ी जबरदस्त मालदार टोली है और वो आई है राजकोट से, भारती बहन जी जो वहां की है, उनका शायद 75 इयर्स का कुछ बर्थडे है, तो उन्होंने खास मधुबन वालों के लिए ये टोली भेजी है, तो अभी हम आपको वो टोली भी देंगे। ओम शांति।
झरता झरना है प्यारे बाबा। तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।